ओम शांति। 12 मार्च 1968 की वाणी चल रही थी। 30वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। तुम समझते हो आगे हम सभी रंग सुनते थे, अनराइटियस थे, अभी अनराइटियस से राइटियस बनते रहते हैं, फिर 21 जन्म राइटियस रहेंगे। रंग बातें सुनने से 63 जन्म रंग रहते हैं, सच्ची बात सुनने से सचखंड में रहते हैं और झूठी बात सुनने से झूठ खंड में जाते हैं। है तो दुनिया एक दुनिया है राइटियस और दूसरी दुनिया है अनराइटियस। राम राइटियस दुनिया बनाते हैं, राम है एक सिर वाला और रावण अनराइटियस दुनिया बनाता है, वो है 10 सिर वाला। क्या अंतर पड़ता है, एक सिर अच्छा या 10 सिर अच्छे? क्यों? एक है सच्चा और बाकी अनेक मिलते हैं तो अनेक बातें हो जाती हैं। एक की सुनी हुई बात भी अगर कोई दूसरा सुनाता है तो जरूर कुछ न कुछ मिक्स हो जाता है। तो मिक्स होने वाली दुनिया को अनराइटियस, और जो प्योर दुनिया रहती है, एवर प्योर की बातें सुनती है, वो दुनिया के लोग पवित्र दुनिया में जाते हैं। तो देखो, राम राइटियस बनाते हैं, अनराइटियस रावण बनाता है। बाप ने समझाया है तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। इन सीताओं को अथवा भक्तियों को भक्ति का फल देने वाला राम है। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से क्या मिलता है? पहचान। किसकी? बाप की पहचान मिलती है। बाप को कहते हैं राम भगवान, कहते हैं मैं आता ही हूं फल देने के लिए। तुम जानते हो हम स्वर्ग में सुख भोगेंगे, नरक में दुख भोगते हैं। ये स्वर्ग है और नरक है, बनाता कौन है? कैसे बनता है? स्वस्थिति में रहने से स्वर्ग बनता है और जो नर है, नर बनाता है नरक। नर को नारायण बनाने वाला कौन है? जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, सदा शिव कहा जाता है। वो आता है तो नर को नारायण बनाता है और फिर रावण कौन बनाता है? हुँ? रावण का अर्थ क्या है? रुलाने वाला। रोने की दुनिया कब से शुरू होती है? दो पूरा नाम क्यों पड़ा? तो चाहे मतों की विविचारी गति हो जाए, चाहे दृष्टि की विविचारी गति हो जाए, चाहे वाचा विविचारी हो जाए, चाहे कर्मेंद्रियां विविचारी हो जाए, ये विविचार ही रुलाता है। सत्य को त्रेता में कोई क्यों नहीं रोते? क्योंकि वहां कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती है। इसलिए अब भी विचारी दुनिया है, अब भी विचारी वाइब्रेशन है, अब भी विचारी इंद्रियों की वृत्ति है। इंद्रियां श्रेष्ठ आचारी रहती है, श्रेष्ठ आचरण करने वाली इंद्रियों से संतान पैदा होती है, संतति चलती है, दुनिया की वृद्धि होती है। तो दुख का मूल क्या हुआ? अभी बाप कहते हैं कि अब तुम स्वर्ग में सुख भोगेंगे, बाकी सभी शांति धाम में रहते हैं। बाकी सभी कितने और तुम कितने हैं? बस 9 लाख स्वर्ग में सुख भोगेंगे हैं? स्वर्ग कितने साल रहता है? 2500 साल में 9 लाख सुख भोगेंगे हैं? हाँ, तुम बच्चे जो बाप के सन्मुख आकर थोड़ा भी सुनते हो तो स्वर्ग में जरूर जावेंगे। ये बात दूसरी है, फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ करेंगे तो फर्स्ट क्लास स्वर्ग में आवेंगे, थर्ड क्लास पुरुषार्थ करेंगे तो थर्ड क्लास स्वर्ग में आवेंगे, आवेंगे जरूर। कौन? जो तुम बच्चे, तुम सामने वाले को कहा जाता है या दूर वालों को कहा जाता है? जो सामने बैठते हैं मुख के सन्मुख तो कहा जाता है सम्मुख। बाजू में बैठते हैं तो कहेंगे यह वह, और सन्मुख बैठने वालों से कहेंगे तुम। दूर वाले होंगे तो कहेंगे वो। तो वो सब स्वर्ग में नहीं आते हैं और तुम बच्चे स्वर्ग में आते हो। बाकी जो भी है वो सब शांति धाम में रहते हैं, है? तो बाकी कितने हुए है? तुम स्वर्ग में जाते हो और बाकी सब शांति धाम में रहते हैं, तो तुम की गिनती कितनी और बाकी सब की गिनती कितनी है? 10 करोड़ शांति धाम में रहते। अच्छा, और बाकी है? बाकी सब शांति धाम रहते। तुम सब शांति धाम में जाकर के तुरंत वापस आते हो। कहाँ आते हो वापस? स्वर्ग में। तुम शांति धाम में नहीं रहते हो और सब वे सब शांति धाम में रहते हैं। तो कितने हैं जो शांति धाम में रहते हैं नंबरवार लंबे टाइम तक है? सब हाँ, जो भी 500-700 करोड़ हैं सारे शांति धाम में ही तो रहते हैं। तुम जो आदि से लेकर के जब से बाप को तुमने पहचाना है तब से लेकर के अंत तक तुम बाप के सहयोगी बन करके रहते हो, बाप का साथ देते हो, कभी भी बाप की ग्लानी नहीं करते हो, सिर्फ थोड़े समय के लिए अंतिम जन्म में बाप की विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। माया छोड़ती किसी को नहीं है, तो आप बताओ कितने हैं? सब कैसे आ गए? आठ तो ऐसे हैं जो आज से लेकर के अंत तक, अष्ट देवों की लिस्ट है ना, तो जो प्योर देव होंगे वो अपने कुल का साथ तो देंगे ना, थोड़े बहुत कन्वर्ट होने वालों की लिस्ट होगी तो कहेंगे कि इनका कुल अलग है। अरे वो आठ तो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते। जो वफादार होगा, ईमानदार होगा, आज्ञाकारी होगा, फरमानबरदार होगा वो सजा खाएगा, या उल्टा होगा तो सजा खाएगा? तो तुम बच्चे जब बोला गया तुम बच्चे, तो बाप की, वेद का बाप है ना, वेद के बाप की बेहद की नजर के सामने कितने बच्चे होते हैं? आठ बच्चे होते हैं। बेहद का बाप है रूहानी बाप, रूहानी बाप रूहों को इमर्ज करके भी बोलते हैं। क्या जो शिकिल दे बच्चे हैं उनको जब चाहे तब इमर्ज भी कर लेते हैं। तुमको शांति मिलती है और सुख भी मिलता है। कहाँ? सुखधाम में शांति भी है तो सुख भी है, और शांति धाम में, शांति धाम में सिर्फ शांत पड़े रहो। जैसे कोई गहरा किसी को बुखार चढ़ जाए, शरीर की नसें नसें टूटी हुई हो, तो चाहता है किसी तरह छुटकारा मिले, मुक्ति मिले, शांति मिले, बुखार उतर जाता है, ठंडे हो जाते, शांत हो जाते। परंतु ऐसा शांत रहना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन सन्यासी, सन्यासी तो पसंद करते हैं। वो तो कहते हैं स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान, स्वर्ग भले सदा स्वयं स्थिति में रहने वाला स्थापन करता है, परंतु ऐसे सुख हमको नहीं चाहिए। वो ऐसे क्यों कहते हैं? हैं? क्योंकि हठयोगी है, हठ के कारण बाप को नहीं पहचान पाते। उनकी जन्म जन्मांतर की हठ रही है ना शिष्यों के सामने, शिवो हम, क्या हम ही शिव हैं, तो उनकी बुद्धि में जल्दी ये बात बैठती नहीं। जिस विश्व की बादशाही बाप तुम बच्चों को देते हैं, वहां विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है, और शांति धाम में सिर्फ शांति है। सुखधाम में शांति भी है तो सुख भी है, सभी कहते हैं विश्व में शांति हो, सन्यासी भी क्या कहते हैं, जब अपना भाषण पूर्व करते हैं तो बुलवाते हैं ना, विश्व में शांति हो। तुम प्रदर्शनी में भी दिखाते हो, इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में सुख शांति सब थी। विश्व में शांति थी तब तो मानते हैं ना, अगर विश्व में कभी शांति हुई ना होती तो विश्व में शांति क्यों मांगते हैं। कोई ने रसगुल्ला खाया होगा तो रसगुल्ला बार बार याद आएगा, मांगेगा? खाया ही नहीं होगा तो याद कहां से आएगा, मांगेगा कैसे? जब एक धर्म था तो विश्व में शांति थी। तुम कितना समझाते हो कि एक धर्म होता है, एक प्रकार की सबकी धारणा होती है तो शांति होती है, अनेक धर्म होते हैं तो दुनिया में अशांति होती है, सब आपस में टकराते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है। क्यों नहीं बैठता है, हैं? क्योंकि और अनेक धर्मों में कन्वर्ट होकर रहने वालों की संख्या बहुत ढेर है, और आदि से लेकर के अंत तक अपने धर्म में टिकने वालों की संख्या बहुत थोड़ी है। इतना समझाते हैं, कितने लिख करके भी जाते हैं कि बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में आने वाले लिख कर भी जाते हैं कि बहुत अच्छा है, फिर आने वालों की संख्या कितनी होती है, 5-10। उनमें भी कोई ठहरते हैं और कोई नहीं ठहरते हैं। बाप कहते हैं ये सब पिछाड़ी में आवेंगे, क्या इस समय जिन्होंने थोड़ा संदेश लिया, कांध भी हिलाई, थोड़ा भी कांध हिलाई, भले बाद में माना ना माना, आए या ना आए, समझे या न समझे, ठहरे या न ठहरे, लेकिन अंत में जब आवाज निकलेगी तो ये सब आवेंगे जरूर। इसलिए तुम बच्चे हार्ट फेल मत हो जाओ। क्या सुनाने जाते हैं तो सुनते ही नहीं, थोड़ा बहुत किसी ने सुन लिया फिर सुनते नहीं, तो हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जो भी बीज डालेंगे वो बीज कभी व्यर्थ नहीं जावेगा। फिर कोई बीज ऐसे होते हैं कि जब उनका मौसम आवेगा तो अंकुर निकलेगा, मौसम नहीं होता तो अंकुरित नहीं होते। कोई बीज ऐसे होते हैं हर मौसम में उग जाते हैं, तो हताश नहीं होना चाहिए। पक्का निश्चय रखो कि हट्टी तो एक ही है, हट्टी माना दुकान, किस बात की, ज्ञान माने जानकारी, सच्चाई की जानकारी की हट्टी तो एक ही है, मुक्ति और जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है, और दुनिया में कहीं भी मुक्ति जीवन मुक्ति मिल ही नहीं सकती। आखिर जावेंगे कहां, क्योंकि दुनिया में दुख दर्द तो बढ़ते जावेंगे या घटते जावेंगे, दुख दर्द तो बढ़ते ही जावेंगे, तो बहुत दुखी हो जावेंगे तो आखिरीन आवेंगे जरूर। तुम जानते हो कोई कोई दुकानदार ऐसे होते हैं जो एक ही दाम पर टिके रहते हैं। क्या तुम्हें लेना हो तो लो, ना लेना हो तो कोई बात नहीं, हिलते नहीं है। ऐसे नहीं कि पहले समझाते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, फिर कोई साधु सन्यासी आ गया त्रिपुंडधारी तो वो बात समझाई नहीं, बात बदल गई ना। पहले समझाते हैं शिवशंकर एक नहीं है, फिर कोई एडवांस आरती वाला पहुंच जाता है, अच्छा शिवशंकर एक नहीं है तो ये तो बताओ कि शिवशंकर को मिलाकर एक क्यों कर दिया, और किसी देवता के साथ शिव का नाम क्यों नहीं मिलाया। अरे कोई देवता के साथ तो शिव का नाम मिला दिया होता तो आगड़म बगड़म करके भागेंगे। समझाते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, है? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान ने गीता सुनाई वो भगवान कृष्ण नहीं है। अच्छा कोई पूछे उनसे कौन सा कृष्ण नहीं है, सत्ययुग का या संगम युग का पाठ बजाने वाला, तो क्या कहेंगे, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, माना सत्ययुग में जो कृष्ण पैदा होता है वो गीता का भगवान नहीं है। अच्छा ठीक है संगम युग का है, संगम युग में कृष्ण की आत्मा जो 84वां आखिरी जन्म लेती है वो गीता का भगवान है या नहीं है, कहेंगे नहीं है, फिर कौन है, कहेंगे शिव है। अच्छा तो गीता का भगवान आकर के गीता सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं, किसके द्वारा सुनाते हैं, कहेंगे ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं। अगर ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं तो सुनाने वाला जो है वो साकार हुआ या निराकार हुआ, साकार हुआ, तो फिर कैसे कहते हो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। तुम ही तो कहते हो कि कृष्ण की आत्मा आखिरी जन्म में ब्रह्मा बनती है और ब्रह्मा के तन में शिव भगवान आकर के ज्ञान सुनाते हैं, तो गीता ज्ञान ब्रह्मा के द्वारा सुनाया ना, ब्रह्मा कहो चाहे कृष्ण का अंतिम जन्म कहो बात तो एक ही है। तो गीता का भगवान कृष्ण हुआ या नहीं हुआ साकार में, हा? अरे उनके अनुसार गीता का भगवान साकार में कौन हुआ, ब्रह्मा हुआ। फिर उनको बताओ इसका मतलब भगवान आकर के मुरली में झूठी बातें सुनाता है गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, समझने वाले खुद ही नहीं समझेंगे तो दूसरों को क्या समझावेंगे। कितने साल हो गए, 70-71 साल हो गए चिल्लाते चिल्लाते गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है, दुनिया में किसी ने माना, किसी ने नहीं माना। क्यों नहीं माना, कि समझाने वाले खुद ही नहीं जानते तो समझाएंगे कैसे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि आखिरी ये शूटिंग कहां से होती है कि गीता का भगवान कृष्ण है, ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया में ये शूटिंग होती है, यज्ञ के आदि में ही ये शूटिंग हो गई। भगवान शिव ने जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश किया था, दादा लेखराज के साक्षात्कारों का अर्थ सुनाया था, उस प्रजापिता को सब भूल गए। ब्रह्मा भी भूल गए, अगर न भूले होते तो सन 47 से लेकर 51 तक जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखा उसमें प्रजापिता जरूर जोड़ते, परंतु वो बाप भूल गया। गीता का भगवान जो गीता माता का पति है वो भूल गया और खुद ही अपन को गीता का साकार भगवान समझ करके बैठ गए। अब बाप कहते हैं जो खुद ही भूले हुए हैं वो दूसरों को कैसे समझावेंगे। जरूर पीछे समझने वाले पिछाड़ी में आवेंगे या पहले आवेंगे, स्वर्ग में भी बाद में आवेंगे। गीता का भगवान जो गीता सुनाने वाला है वो साकार भगवान, इस बात की पहचान ब्रह्मा को हुई नहीं हुई? वो अपन को ही समझते रहे कि गीता का साकार भगवान जो गीता ज्ञान सुनाने वाला है वो मैं स्वयं हूं। तो पहला शिवो हम कौन हुआ? पहला शिवो हम तो वो ही हो गए। बाप कहते हैं कि जो न समझने वाले हैं बाद में समझने वाले हैं वो नई दुनिया में कब आवेंगे? बाद में आवेंगे। इसलिए कृष्ण की आत्मा बाद में आती है, पहले तुम बच्चे परमधाम की स्टेज का अनुभव करते हो। तुम बच्चे परमधाम को षष्ठी पर उतारेंगे या ब्रह्मा और ब्रह्मा जैसी फॉलोअर आत्माएं परमधाम को षष्ठी पर उतारेंगी? हैं? वो तो शरीर छोड़ने वाले हैं, जैसे ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया वैसे वो आत्माएं भी शरीर छोड़ करके चली जाएंगी देहभान में। वो परमधाम को इस षष्ठी पर संगठित रूप में उतार ही नहीं सकती। तो बोला तुम बच्चे भी एक बात पर ही डटे रहो, तुम्हारा भी एक ही दाम होना चाहिए। क्या? फर्स्ट क्लास चीजें मिलेंगी। क्या? फर्स्ट क्लास स्वर्ग में जावेंगे। ये शिव बाबा की हट्टी है। क्या? ऊंचते ऊंच की हट्टी है ये दुकान, कोई छोटी मोटी नहीं है। वो शिव बाबा है तो निराकार, निराकार माना बिंदु नहीं है। जब बाबा कहते हैं तो बाबा साकार है। बाबा कहा जाता है ग्रैंडफादर को, बाबा कहा जाता है बूढ़े को, बाबा कहा जाता है नीले पीले काले कपड़े पहनने वाले को। बाबा कोई बिंदी को नहीं कहा जाता। बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव, वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। वो बिंदु बाप जब साकार में आता है तो दूसरे दूसरे संबंध बनते हैं, अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। कब? जब जब शरीर में आए तब। तो शरीर में आने के बावजूद भी वो निराकार कहें या देहदारी कहें, बल शरीर में आता है, बल देह में आता है तो भी वो देह में उसकी बुद्धि धरी हुई नहीं रहती है। जिसकी बुद्धि रूपी आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा देह में धरी हुई हो उसे कहेंगे देहधारी, और जिसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा देह से उपराम हो जाए, परे हो जाए, उसको कहेंगे निराकारी आत्मा। तो शिव बाबा है निराकारी, सदैव निराकारी है या कब निराकारी कब साकारी? वो तो सदैव निराकारी है, परंतु उस निराकार को साकार ब्रह्मा भी चाहिए। क्या नहीं तो बोलेगा कैसे? प्रजापिता भी चाहिए, ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता भी बन जाता है, परंतु प्रजापिता
नहीं।
प्रजापिता फरिश्ता नहीं बन सकता। क्यों? प्रजापिता की ड्यूटी है, बाप की जिम्मेवारी है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, इस मनुष्य सृष्टि की आखिरी मनुष्य आत्मा भी जब तक निराकारी स्टेज धारण न करे, चाहे खुद के पुरुषार्थ से, चाहे रोगों की भोगना से, और चाहे धर्मराज के दंडों से देहभान छटे, लेकिन जब तक पूरा देहभान न उतरे और आत्मा बिंदु न बन जाए, इस मनुष्य सृष्टि की एक एक आत्मा, तब तक प्रजापिता वापस परमधाम नहीं जा सकता। तो वो निराकार बाप इस मुकर्रर रथ में आते हैं, जिसे कहते हैं भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली रथ, रथ माना शरीर, न चाहते हुए भी शरीर छूट जाए, अकाले मौत में छूट जाए, उसे भाग्यशाली रथ कहेंगे, या स्वेच्छा से हंसते हंसते खुशी खुशी शरीर छूटे, जब चाहे तब शरीर छोड़े और जब चाहे तब शरीर धारण करें, ऐसी आत्मा की स्टेज हो जाए तो कहेंगे भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली रथ जो होगा वो ऐसा भाग्यशाली होगा जिसको पांच तत्वों की मार पड़ ही नहीं सकती, प्रकृति जीत रथ होता है, उसका नाम ही पड़ता है कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। तो जिसको कोई काल खा नहीं सकता, ऐसा कोई मनुष्य होता है दुनिया में 5000 साल में? चलो 5000 साल की तो हिस्ट्री नहीं, 2500 साल की हिस्ट्री में कोई ऐसा मनुष्य देखा जिसको कोई काल ने न खाया हो? शास्त्रों में तो लिखा हुआ है शंकर जी को काल नहीं खाता, लेकिन वो लिखा हुआ है, लिखने वालों ने लिखा है, पढ़ने वालों ने पढ़ा है, सुनाने वालों ने सुनाया है, सुनने वालों ने सुना है, लेकिन देखा तो किसी ने नहीं। मना ये सिर्फ समझने की बात है कि जब सारी सृष्टि का विनाश होता है तो कोई एक मनुष्य आत्मा ऐसी भी तो होगी जो सबसे अंत में शरीर छोड़ेगी, उसको काल के गाल में जाते हुए कोई देख ही नहीं सकेगा, इसलिए कालों का काल महाकाल कहा जाता है। तो तुम जानते हो शिव बाप को प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए, 12.368 की वाणी का चौथा पेज। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो, झूठ बोलते हैं? जिस समय वाणी चली उस समय की बात है ना, तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, ये नहीं कहा तुम हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां, क्या कहा? तुम अपन को कहलाते हो, मैं नहीं कहता हूं, तुम अपन को कहलाते हो कि तुम हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, ये तुम कहलाते हो, शिव कुमारियां तो नहीं कहला सकते। क्यों? शिव तो बिंदी है, बिंदी के बच्चे बिंदी, बिंदी छोटी सी तो उसके बच्चे भी बिंदी, सांप लंबा तो उसका बच्चा भी लंबा, हाथी मोटा होगा तो हाथी का बच्चा भी कितना भी छोटा हो तो भी मोटा होगा। तो बिंदी बाप का बच्चे भी बिंदी, बिंदी शिव को कहा जाता है। तुम शिव कुमार कुमारियां तो नहीं कहला सकते। क्यों?
बिंदी
है तो बिंदी बाप, लेकिन उनके कुमार कुमारियां होते ही नहीं, उनके तो सारे ही कुमार हैं। शिव आत्मा के बच्चे जो हैं वो सब आत्मा रूपी बच्चे हैं या बच्चियां भी हैं? बच्चे ही हैं। बिंदु बिंदु आत्मा में स्त्री पुरुष का फर्क कैसे करेंगे? पता चलेगा? पता ही नहीं चल सकता। तो शिव बाप के तो सब बच्चे ही बच्चे हैं, आत्मा रूपी भाई भाई हैं, भाई बहन नहीं कहे जा सकते। भाई बहन बनने के लिए फिर शिव को साकार शरीर में प्रवेश करना पड़े, तो तुम शिव कुमारियां तो नहीं कहला सकते। ब्राह्मण बनने बिगर तुम देवता कैसे बनेंगे? क्या कोई कहे कि हम तो शिव कुमार से सीधे ही देवता बनेंगे? सो नहीं बन सकते। क्या करना पड़े? पहले ब्राह्मण चाहिए। जो भी आत्माएं मनुष्य सृष्टि में विनाश के टाइम पर शरीर छोड़ेंगी, बिंदु आत्मा बनेंगी ना, बिंदु आत्माएं सब शिव कुमार, कुमारियां कोई होती नहीं, शिव के बच्चे हैं, वो सब परम धाम में जावेंगे, जावेंगे ना। जब आवेंगे तो किसके कुमार कुमारियां बनेंगे?
है?
देवी देवताओं के बच्चे बनेंगे, लेकिन देवी देवताओं को जन्म देने वाले कौन? जरूर कोई ब्राह्मण ही चाहिए। ब्राह्मण संगम युग में होते हैं या सतयुग त्रेता में होते हैं? संगम में होते हैं। पहले वो स्वर्णिम संगम युग चाहिए, जहां ब्रह्मा कुमार कुमारी 100% बनते हैं। संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता बहुत हैं, जो ब्रह्मा कोई नहीं मानते हैं। है? ऐसे बहुत हैं जो बीच में बिचौलिया ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, डायरेक्ट शिव बाबा से लेना चाहते हैं। ऐसे हो सकता है? शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करते हैं या निवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं? तो जब प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करेंगे तो प्रवृत्ति मार्ग में कोई भी अनुष्ठान करते हैं कब सफल होता है? दोनों की गांठ बंधे स्त्री पुरुष की, तो कहते हैं अनुष्ठान सफल होगा। अकेले तो नहीं होता, तो शिव बाबा भी अकेले बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं देता है। डायरेक्ट शिव बाबा से लेना चाहते हैं, ये हो नहीं सकता, कुछ भी मिलता नहीं है। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मा को ही नहीं मानते, कहते हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, छोड़ो इन्हें ब्रह्मा को। ऐसे भी हैं, उनको कहेंगे शूद्र। क्यों? जो ब्रह्मा को मानते ही नहीं, तो ब्रह्मा के कुमार या कुमारी ब्राह्मण कहे जावेंगे? नहीं कहे जा सकते। ऐसे शूद्रों का तो संग भी नहीं करना चाहिए। क्या? पहले उनसे पूछो, तुम्हारी अम्मा कौन? और तुम्हारा बाप कौन? आज पार्टियां तो बहुत निकल रही है ना, और जो निकल रही है सब अपने को वैष्णवपंथी विष्णु भगवान की औलाद। तो उनसे पूछो, सब बातें एक तरफ उठा के रखो, पहले हमें ये बताओ कि तुम्हारी अम्मा कौन और तुम्हारा बाप कौन। तुम बाप किसको मानते हो, अम्मा किसको मानते हो? अगर नहीं बताए तो समझो शूद्र। शूद्र का तो संग भी नहीं करना चाहिए हैं? उनसे बात भी नहीं करना चाहिए हैं? अगर शूद्र से बात भी की ना, तो शूद्र की तरफ बात करते समय देखना पड़ेगा, आंख का संग हो जाएगा हैं? उसकी बात सुननी पड़ेगी, कान का संग हो जाएगा। मुख से लेन देन करेंगे बात का तो मुख का संग हो जाएगा। इतनी इंद्रियों का संग होगा तो रंग लगेगा कि नहीं? इस दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य हुआ है जिसको संग का रंग न लगा हो? हुआ है कोई? एक भी मनुष्य नहीं हुआ है। एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जिसको संग का रंग न लगा हो, चाहे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट या महात्माएं या कोई बड़े बड़े धर्मात्माएं ऋषि मुनि क्यों न हुए हों, सबको संग का रंग लगा है और सब नीचे गिरे हैं और दुनिया भी नीचे गिरती गई। एक शिव बाबा ही है जो कितनों के भी संग के रंग में आए लेकिन उसको संग का रंग नहीं लगता। तो ऐसे शूद्रों से बात भी नहीं करनी चाहिए, ईविल सोल है क्या? ईविल सोल क्यों कहा? ईविल सोल तो भूत प्रेतों को कहा जाता है। और भूत प्रेत कौन बनते हैं? भूत प्रेत वही बनते हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। क्या? और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ही भूत प्रेत बनते हैं। द्वापर युग से कोई देवात्माएं इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए, फिर बाद में कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए। देवता ही तो कन्वर्ट हुए। देवता बनने से पहले वो ब्राह्मण थे कि नहीं? संगम में ब्राह्मण थे। तो कितने ढेर सारे विधर्म, और उन सब विधर्मियों में ढेर के ढेर देवताएं कन्वर्ट होते रहे। इसका मतलब ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते। वैसे भी भारत में यादगार रूप में ब्राह्मणों की नौ पुरियां मानी जाती हैं। जरूर नौ धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो नौकरियां बनी हुई है, तो बनना है तो फर्स्ट क्लास बनना है या सेकंड, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास बनना है? फर्स्ट क्लास बनना है। फर्स्ट क्लास के अलावा सब ईविल सोल। माना बनना है तो सूर्यवंशी बनना है, और नहीं तो ईविल सोल तो बनना नहीं है। क्योंकि जो भूत प्रेत बनते हैं वो तो बहुत भटकना पड़ता है उनको। आज इस शरीर में प्रवेश करेंगे, इनके परिवार को और इनको दुख देंगे, फिर यहां से भगाए जाएंगे, औलियों के द्वारा मारपीट की जाएगी, तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे चलता रहता है। समझते हैं ऐसी ईविल आत्माएं समझते हैं कि हमको तो डायरेक्ट शिव से मिलता है। कहेंगे हमको शिव बाबा ने यह प्रेरणा दी, हमको शिव बाबा ने वह प्रेरणा दी, शिव बाबा हम में प्रवेश करते हैं, ये भी कहने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं इनको कुछ नहीं मिलेगा। क्या? इनको शिव बाबा से कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ही ब्राह्मण कुल का। जो ब्राह्मण नहीं कहलावेंगे, ब्रह्मा की औलाद नहीं कहलावेंगे, गोया शूद्र ही ठहरे। ब्रह्मा को मैं ही मानते, ब्राह्मण और शूद्र आपस में मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वो हंस और वो बगुला, बगुले गंध खाने वाले और वो ज्ञान के मोती चुगने वाले। मनुष्य गुरुओं में से जो कुछ निकलता है वो गंध ही गंध निकलता है क्या, और शिव परमात्मा से जो भी मुख से, ब्रह्मा मुख से निकलता है वो रतन ही रतन निकलते हैं। तो अपन को देखना चाहिए हम रतन चुंगने वाले हैं या मनुष्यों की गंध खाने वाले हैं। हम तो रतन ही चुंगेंगे। ब्राह्मण कुल में ही ना आया तो हंस कैसे बनेंगे, कुछ भी समझते नहीं है, जरूर भूले हुए हैं, देहाभिमानी है ना। सिखलाने वाले टीचर के बगैर कोई भी देही अभिमानी बन ही नहीं सकता। सिखाने वाला टीचर होगा वैसा ही तो बनेगा है? सिखलाने वाला टीचर अगर देही अभिमानी होगा तब ही तो देही अभिमानी बनावेगा। कौन है ऐसा टीचर जो सदैव आत्मा अभिमानी है, सदा शिव है, शिव माने बिंदु। तो जो सदैव ऐसा रूहानी स्टेज में रहने वाला है वो ही हमको रूह बनाते हैं। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे उल्टे ख्यालात आते हैं, मन में आवेगा हम इस ब्रह्मा से पढ़ेंगे नहीं, हम इनको पत्र क्यों लिखें, ब्रह्मा से नहीं पढ़ते हैं, ब्रह्मा से नहीं पटती है तो उनसे शिव की भी कैसे पटेगी क्या। बेसिक नॉलेज में जो चलते रहे और उन चलने वालों की अगर ब्रह्मा से ही नहीं पटी तो शिव बाबा से पटेगी है? अरे ब्रह्मा ने कितना सहनशीलता का पार्ट बजाया, उस ब्रह्मा की ही जो नहीं सहन कर सके, और शिव बाबा तो कड़क पार्ट है, उसके साथ कैसे पटेगी। शिव बाबा कहेंगे मेरी बच्चों से नहीं पटेगी तो फिर मैं क्या करूंगा। ब्रह्मा को न मानने वाले बर्थनाटे पहनी है क्या। जो ब्रह्मा को नहीं मानते हैं वो बर्थनाटे पहनी, एक कौड़ी की भी उनकी कीमत नहीं। अभी एडवांस में भी भले चल रहे हो लेकिन कोई कहे कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, अरे ब्रह्मा कोई एक है क्या, ब्रह्मा के चार पांच मुख दिखाए जाते हैं। मैं जिस तन में भी प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। मानो 68 के बाद 18 जनवरी को ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया दादा लेखराज ने, तो क्या शिव चला गया, स्वर्ग की स्थापना हो गई, पति से पावन बन गए, अरे बाप अधूरा काम करके छोड़ के जावेंगे क्या। कहते हैं जो काम की शुरुआत कर दे और पूरा न करे वो अच्छा आदमी नहीं होता है। अब भगवान तो अच्छे से अच्छा है, उससे ऊंचा कोई होता ही नहीं। वो इस सृष्टि पर आवेगा, अंजाम करेगा, मैं बच्चे तुमको साथ लेकर के जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, खेलेंगे, खावेंगे, اتنا بولنے والا پھر دھوکہ دے کے چلے جاوے گا کیا؟ تو باپ کہتے ہیں برہما کو ضرور ماننا پڑے، ایک برہما شریر چھوڑتا ہے تو دوسرا برہما تیار ہوتے ہیں۔ بابا خود کہتے ہیں اور برہما دوارا ہی کہتے ہیں کہ مام ایکم یاد کرو، کیا کوئی دوسرے کو یاد نہ کرو، پرنتو برہمن کل تو ضرور چاہیے، برہمن کے ساتھ کنیکشن ہی نہیں، اپنے کو برہمن کہلاوے پرنتو برہمن پریوار کے ساتھ کنیکشن ہی نہیں ہے۔ تو باپ یہ بات پسند کرے گا؟ باپ کا پریوار ہوتا ہے اور پریوار میں ایک بچہ چھٹک کے الگ کھڑا ہو جائے، کہے ہم اس پریوار کو مانتے ہی نہیں، تو جیسے باپ کو نہیں مانتے، برہمن کے ساتھ کنیکشن نہیں تو باقی کیا رہا، کس کے ساتھ کنیکشن نہیں؟ ان کو کہا جاوے گا نردھن کا، ان کا کوئی دھنی دھوری نہیں۔ جو برہما کا مکھ دیکھے وہ شیو بابا کا مکھ دیکھے، کیا
برہما کا مکھ؟
اگر برہما کا مکھ نہیں دیکھا تو شیو بابا کا بھی مکھ نہیں دیکھا۔ اچھا بات، ہاتھ اٹھاؤ یہاں، کتنے کتنے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے برہما کا مکھ دیکھا؟ اچھا پہلے وہ ہاتھ اٹھاؤ جو کہتے ہیں ہم نے برہما کا مکھ دیکھا ہی نہیں، ہاں دونوں کا ہی دیکھا؟
نہیں،
وہ تو آپ بولتے ہیں، ہم تو سب کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی ہے جو یہ کہتا ہم نے برہما کا مکھ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ برہما مانے بڑی اما،
بول دیا نا،
سویکار، بولنے سے سویکار، تو مکھ دیکھا، بول لینا بات الگ، سویکار کر لینا بات الگ، لیکن مکھ دیکھا، دیکھا، ارے
دیکھا،
ہاں
اس کا تو یار کسی نے نہیں دیکھا،
اس کا مکھ کسی نے دیکھا۔ چلو کوئی بات نہیں، ایک برہما کو چھوڑو، ہاں
وہ تو دیکھ لیا۔
ہاں تو یہ سمجھنے کی بات ہے نا کہ شیو باپ اس سرشٹی پر ہووے اور برہما نہ ہووے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ شیو بابا پڑھائی پڑھاوے اور کوئی کہے کہ برہما نہیں ہے، ہم نے ڈائریکٹ شیو بابا سے پڑھائی پڑھی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ برہما ہوتا ہے، برہما نہیں ہوتا ہے تو پرجاپتا ہوتا ہے، اور پرجاپتا ہوتا ہے ساکار میں تو ساکار میں ماں بھی ہوتی ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ ماں کبھی گھونگٹ میں ہو دکھائی نہ پڑے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے۔ تو بولا ایسے بھی چریے کھریے ہوتے ہیں، کس کو گیان بھی دیتے ہوں گے تو ان کو ان کا تیر ہی نہیں لگے گا جو برہما کو نہیں مانتے۔ باپ ہر طرف سے سمجھاتے رہتے ہیں، کوئی بھی بھول نہ ہو، بہت چاڑھی اونچی ہے، پاؤں اگر کھسک گیا تو خلاص ہو پڑیں گے، بیکار میں گیا تو گویا اوپر سے نیچے گرا، کیونکہ دیہ ابھیمان کے پیچھے ہی سارے وکار آتے ہیں، پہلے دیہ ابھیمان، پھر کام کرودھ لوبھ موہ اہنکار، دیہ ابھیمان کے پیچھے ہی سارے وکار ہوتے ہیں۔ راون کا چتر بناتے ہیں، سب سے پہلا سر کون سا دکھاتے ہیں؟ کون سا روپ ہوتا ہے؟ گدھے کا سر دکھاتے ہیں۔ گدھا کیا کرتا ہے؟ کتنا بھی سنان کراؤ، یہاں بھی ایسے ہیں، روز گیان سنان کریں گے پھر بھی روز دیہ ابھیمان کی مٹی میں لتھا پتھ لوٹیں گے جیسے گدھا لوٹتا ہے۔ اس لیے وہ گدھے کا چتر اوپر फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकारों के सिर बाद में नीचे दिखाए जाते हैं। अगर कोई देही अभिमानी बन जाए तो पांच विकार सता ही नहीं सकते, बड़ी भारी मंजिल है। देह अभिमानी को ही भूत कहा, हाँ देह अभिमानी को ही भूत सताते हैं। तो टीचर जो पढ़ाते हैं उनको कितना मान देना चाहिए? टीचर साकार होता है, पढ़ाएगा तो मुख से बोलेगा ना, आवाज साकारी दुनिया में होती है या निराकारी दुनिया में होती है? साकारी दुनिया में आवाज होती है। तो पढ़ाने वाले टीचर को मान देना चाहिए, याद करना चाहिए। तो बाप कहते हैं बल काम काज करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ाई पढ़ो। कोई कोई शादी के बाद भी पढ़ाई पढ़ते हैं, तुम भी गृहस्थ व्यवहार में पढ़ते हो और बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। कोई कोई समय बहुत अच्छी अच्छी गुहिया आती गुहिया पॉइंट निकलती है, पढ़ते नहीं है तो फिर धारणा ही नहीं होती है, फिर कच्चे पढ़ जावेंगे। बहुत कच्चे पड़ जाते हैं, धारणा नहीं होती है, विकार में फंस जाते हैं। देह अभिमान के बाद ही सब विकार आते हैं, इसलिए बाप कहते हैं देह अभिमानी बनो, तुम नंगे आए थे, अभी फिर सतयुग में तुम्हारा शुद्ध संबंध होगा। अभी यह अशुद्ध संबंध है, फिर बाप को याद करना है। कितना सहज है, इसका नाम ही है राजयोग, अर्थात सहज ज्ञान और सहज पढ़ाई, सहज याद। कितना सहज है, बेहद का बाप बेहद का सुख देंगे। सहज होगा तो सुख भासेगा, या कठिन होगा तो सुख भासेगा। जो उनको याद करेंगे तो सुखी क्यों नहीं होंगे? बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं फिर भी विकारों में गिर पड़ते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, लोभ में आ जाते हैं, फिर दुखी हो पड़ते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते।